महाराज क्या कर रहे हैं? सरोवर में प्रवेश कर रहे हैं कृष्ण की रक्षा के लिए। और नंद महाराज के और भी साथी हैं जिन्होंने कृष्ण को अपना जीवन अर्पित किया है। तो बलराम जी को पता है कृष्ण की शक्ति के बारे में, लेकिन उन्होंने उनको रोका कि आप मत जाओ। कृष्ण प्राणान निर्विशतो नंदादीन वीक्षितम हृदम प्रत्यसेधम स भगवान रामहं कृष्णानुभाववीन। तात्पर्य लिखा है, सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि भगवान बलराम ने कुछ ग्वालों से बातें करके रोका, उसको पकड़ के रोका और कुछ पर अपनी शक्ति भरी हंसी से रोका। सारे ग्वाले इस स्थिति से व्याकुल होकर कृष्ण के लिए सरोवर में घुस करके प्राण त्यागने के लिए तैयार थे। भगवान कुछ काल तक सामान्य मनुष्य के आचरण का अनुकरण करते हुए सर्प की कुंडली के भीतर पड़े रहे, किंतु जब उन्हें इसका भान हुआ कि गोकुल गांव की स्त्रियां बच्चे और सब निवासी उनके प्रेम के कारण बहुत दुखी हैं, तो काले के बंधन से तुरंत उठ खड़े हुए। इत्थम स गोकुल मनन्य गतिम निरीक्ष शस्त्री कुमार मति दुखित मात्म हेतु आज्ञाय मर्त पदवी अनुवर्तमाना मुहूर्त मुदतिष्ठ दुरंग बंधा। अब भगवान छोटे कैसे उसके शरीर से, काली के कुंडली से भगवान छोटे कैसे? उन्होंने थोड़ा अपने शरीर को बढ़ाया, उसने तुरंत छोड़ दिया काली ने। भगवान ने शरीर को बढ़ाया तो काली की कुंडली को कष्ट होने लगा, तो उसने छोड़ दिया और वो बहुत गुस्सा होकर के अपने फनों को जो उठा करके स्थिर खड़ा हो गया, ये सोच करके कि शत्रु जो है बलवान है। बड़ी सावधानी से वो खड़ा हो गया बहुत तैयार होकर के, और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुने विष के पात्रों जैसे लग रहे थे, उसके मुख पर स्थित घूरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। इस तरह सर्प ने भगवान पर नजर डाली, आंखों से भी आग निकल रही है, कितना दिखेला सर्प है, मुंह से आग आंखों से आग निकल रही है। तन प्रत्यमान बपुसा व्यथितात्म भोग त्यक्तोन्न मय्य कुपिता सफणान भुजंग तस्थोसन छब सन रंध्र विसांबरी सन स्तंभे क्षणोल मुख्य मुखो हरि मीक्ष मान। कालिया बारंबार अपने दो मुही जीव से अपने ओठों को चाटता है, प्रत्येक मुंह में दो दो जीव हैं, सर्प के दो जीव होती हैं, उसके 101 फण थे कालिया के, है ना, तो जीवें कितनी हो गई 202, एक मुंह में दो दो जीवें होती हैं, है ना। ओठों को चाट रहा था और विषैली विकराल अग्नि से पूर्ण अपनी दृष्टि से कृष्ण को घूरता जा रहा था, किंतु कृष्ण मानो खेल खेल में उसका उसी तरह चक्कर लगाया जिस तरह गरुड़ सांप से खेलते हैं। प्रतिक्रिया के रूप में काली भी उनके साथ साथ घूमता जाता था और भगवान को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। भगवान उसकी परिक्रमा कर रहे हैं, पूरी दुनिया भगवान की परिक्रमा करती है और भगवान उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। और वो जो ना वो भी घूमता जा रहा है भगवान को साथ साथ। तम जिहे वया दुशिखया परिलेली हानम द्वेष्टणी हति बिराले विषाग्नि दृष्टिम क्रीडन नमम परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम सोप्यवसरम प्रसनीक्षमाण। तात्पर्य लिखा है, कृष्ण इतनी चतुराई से उसके चारों तरफ घूम रहे थे कि उसको अवसर नहीं मिल रहा काटने का। सांप तो बहुत फुर्तीला होता है ना, भगवान में इतनी फुर्ती है, उसके चारों तरफ घूम रहे हैं और तो भी वो घूम करके भी भगवान को नहीं पकड़ पा रहा है, जबकि भगवान का चक्कर ज्यादा ना लंबा है। एक वो भगवान की इतनी गति में घूम नहीं पा रहा है, भगवान के साथ साथ घूम नहीं पा रहा है, तो कृष्ण इतने चंचल हैं कि सांप उतना चंचल नहीं हो सकता है जितने चंचल कृष्ण है। लगातार चक्कर लगाते लगाते सर्प को थका दिया इसमें ही थका दिया उसको, हालत खराब कर दी उसकी समस्त वस्तुओं के मूल श्री कृष्ण ने कालिया के उभरे हुए कंधों को नीचे दबा दिया। कंधे मतलब मस्तक ना, कालिया के कंधे क्या है, वो मस्तक होते हैं, तो मस्तक जो ऊपर उठे थे उनको दबाया, अब नीचे दबाया और उसके चौड़े सिरों पर चढ़ गए। इस तरह समस्त कलाओं के गुरु भगवान कृष्ण नृत्य करने लगे। उसकी हालत खराब हो रही है और भगवान का नृत्य चल रहा है। और सर्प के सिर में सिर्फ असंख्य मणियों के स्पर्श से उनके चरण गहरे लाल रंग के हो गए। कृष्ण के चरण लाल तो पहले से ही हैं और लाली में और बढ़ गई, शोभा और बढ़ गई, क्योंकि उसमें उसके सिर में लाल रंग की मणियां हैं, चमक रही हैं, तो कृष्ण के चरणों की शोभा और बढ़ गई है। इस प्रकार से कृष्ण की सेवा हो रही है अनजाने में अज्ञात सुकृति। एवं परिभ्रम हतो जस मुन्नतांसम आनम्य तत्पृथुष्य रहा स्वधिरूढ़ आद्यहं तन्मूर्ध रत्न निकर इस पर साति ताम्र पादाम्बुजो खिल कलादि गुरु ननर्त। तात्पर्य हरिवंश में लिखा है, हरिवंश में लिखा है कि सिरा स कृष्णो जग रहा है सो हस्ते नावनम में कृष्ण ने अपने हाथ से कालिए का सिर दबोच लिया और उसे जबरदस्ती झुका दिया। इस संसार में अधिकांश लोग परम पुरुष परम सत्य को शीश झुकाने में आनाकानी करते हैं। बहुत लोग हैं वो अकड़े हुए आते हैं, अकड़े हुए आते हैं, अकड़े हुए चले जाते हैं, मंदिर में आते हैं सिर नहीं झुकाते हैं तो उनकी निहारा काली सर्प के समान है, ईर्ष्यालु सांप ईर्ष्यालु होता है, वैसे अकड़ करके खड़े हो जाते हैं भगवान के सामने सिर नहीं झुकाते हैं। तो सिर झुकाने में आनाकानी करते हैं। भौतिक चेतना की दूषित अवस्था में हम बद्ध आत्मा अपने इस नगण्य पथ पर इठलाने लगते हैं और भगवान के समक्ष सिर झुकाने में आनाकानी करते हैं, किंतु जिस तरह भगवान कृष्ण ने बलपूर्वक उसके सिर को नीचे दबा करके उसे झुकाया, उसी तरह भगवान की काल शक्ति जो है ना बद्ध आत्माओं को झुकाती है। आखिर उनको झुकना पड़ता ही है, गिरना पड़ता है नीचे। शरीर जब छोड़ते हैं तो झुका रहता है उनका शरीर, अकड़ नहीं पाते फिर उस समय। इसलिए अच्छा है कि मृत्यु आने के पहले ही पहले हम भगवान के सामने अपना सिर झुकाए, आज्ञाकारी सेवक बने। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया कि भगवान के चरण कमल तांबे के समान लाल इसलिए हो गए क्योंकि वे काले के सिरों पर असंख्य कठोर मणियों के संपर्क में आ गए। तब भगवान कृष्ण उन तेज तेजस्वी लाल चरणों से सर्प के फणों की सतह पर नाचकर अपनी कला चातुर्य का प्रदर्शन करने लगे। वृंदावन के तरुण स्त्रियों को आनंद प्रदान करने के लिए था जो कृष्ण के प्रेम में बुरी तरह से फंसी है। जो उनकी तरुण जो है ना स्त्रियां हैं कृष्ण की, तो उनको आनंद देने के लिए भगवान नृत्य कर रहे हैं। आगे भगवान उनको नाचते देखकर स्वर्ग लोक के उनके सेवक गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देव पत्नियां वहां तुरंत आ गए। वे मृदंग पणव आनक जैसे बाजे बजाने लगे और कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। देखा आकाश में भी जो है ना जो देवता लोग हैं वो कृष्ण की लीला देख रहे हैं, है ना, तो आकाश में उन्होंने बजाना शुरू कर दिया। जहां कृष्ण का नृत्य हुआ तो फिर कौन रह सकता है। तो जो गंधर्व हैं सिद्ध हैं मुनि चारण हैं वो अपना गाना बजाना शुरू कर दिया। उन्होंने गीत भेंट किए, फूल भेंट किए, स्तुतियां भेंट की। तम नर्तमोद्यतमवेक्षित तदीय गंधर्व सिद्ध मुनि चारण देव बद्ध्वां प्रीत्या मृदंग पलवानक वाद्य गीत पुष्पोपहार नुति भी सहसोप से दुहु। कृष्ण की नृत्य कला का अद्भुत प्रदर्शन स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। तो तुरंत ही ये जो विद्याधर गंधर्व अप्सराएं हैं उनके सेवक हैं, तुरंत सेवा में उपस्थित हो गए हैं, है ना। तो ये कितने भाग्यशाली हैं, अप्सराएं गंधर्व विद्याधर कितने भाग्यशाली हैं। तो इतने भाग्यशाली हैं, है ना। तो जो देवता लोग हैं तो सब ऐसे नहीं जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं। स्वर्ग में बहुत से देवता और गंधर्व हैं, वो अवसर देखते रहते हैं कि कहाँ भगवान का अवतार हो रहा है, कहाँ भगवान की कैसी लीला हो रही है और किस प्रकार से उन्हें भगवान की लीला में सहयोग करना है। तो ऐसे हैं गंधर्व। हे राजन, कालिया के 101 सिर थे और यदि इनमें से कोई एक नहीं झुकता है तो दंड देने वाले भगवान कृष्ण अपने चरण से उसी सिर को कुचलते हैं। जो भी सिर उठे उसी के ऊपर अपना पैर रखते हैं। तो भगवान का नृत्य भी जो ना अद्भुत है और उसको दंड भी दे रहे हैं साथ साथ। एक साथ दो कार्य है, दंड देने का भी कार्य चल रहा है और आनंद ले रहे हैं और आनंद दे रहे हैं अपने भक्तों को। एक साथ कई कार्य कर रहे हैं भगवान। जब कालिया मृत्यु के निकट पहुंच गया, अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा, अब चक्कर आने लगा उसको। अब ऐसे ऐसे सिर होने, पहले ऐसे उठते थे ऐसे ऐसे, अब उसके सिर ऐसे 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 हो रहे, ऐसे सो रहे, चक्कर आ गया, चक्कर आने।
हारमोनियम के
मृत्यु के निकट पहुंच गया है और खून उगलने लगा। तो फिर बहुत कष्ट का अनुभव किया उसने, बहुत कष्ट अनुभव किया। यद्यक्षरो न नमतेंग सतह के शेषनां तत्तन ममर दिखर दंड गरों धरों रिपात क्षीणायु सो भ्रमद उल्बण माशतो श्रृंग नस्तो वमन परम कस्मल है माप नागहा। कितने सिर हैं उस काली सर्प के? 101 फण है ना। सब जो ना उनको छिन्न भिन्न कर दिया भगवान ने। आगे क्या हुआ? अपनी आंखों से बेसहला कीचड़ निकालते हुए रह रहकर अपने किसी एक सिर को ऊपर उठाने का साहस करके क्रोध से फुफकारता था। कितना क्रोध है सर्प की योनि में, क्रोध और ईर्ष्या कितना ज्यादा है। अभी देखो मृत्यु के निकट पहुंच गया है लेकिन तो भी वो गुस्से से फुफकारता है, अभी मरने वाला है। तब भगवान उसी पर नृत्य करते हैं और पांव से नीचे झुका करके उसका दमन करते हैं। और देवताओं ने अच्छा अवसर प्राप्त किया इसलिए भगवान की पुष्पों द्वारा पूजा की। पश्चाक्षिभिर्गरल मुन्वमतः सिरहसु यद्यत् समुन्नमति निःश्वसतो रुसोच्चै नृत्यन् पदानु नमयन् दमयाम् बभूव। पुष्पे प्रपूजित एवेह पुमान् पुराणः। हे राजा परीक्षित, भगवान कृष्ण के द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी फण कुचलकर टूट गए। तब अपने मुखों से बुरी तरह खून उगलते हुए सर्प ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना। इस तरह कालिया ने मन ही मन भगवान की शरण ग्रहण कर ली। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणा सहस्रों रक्तम मुखैरुर्वमन नृपभग्न गात्रहां स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम। तो अब उसने मनीमन भगवान नारायण के शरण ली। तो तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद ने, भगवान कृष्ण जो पुस्तक है उसमें दिखलाया है कि इसके पूर्व कालिया विष उगल रहा था, अब विष समाप्त हो जाने से खून उगलने लगा। जितना विष था समाप्त हो गया तो अब खून उगल रहा है। इस तरह उसका हृदय विष रूपी कलर से धुल गया, हृदय स्वच्छ हो गया। भगवान उसके हृदय को स्वच्छ किया है, जितना जहर था निकल गया उसका। काली की पत्नियां वास्तव में सच्चे रूप में कृष्ण भक्त थी, उन पत्नियों ने प्रायः अपने पति को भगवान के शरण ग्रहण करने के लिए मनाने का प्रयास किया था। अंत में असह्य पीड़ा के कारण कालिया ने अपनी पत्नी की सलाह का पत्नियों की सलाह का स्मरण किया और भगवान की शरण ग्रहण कर ली। और पहले क्या था, ये जो है गरुड़ जी का दुश्मन था ये कालिया, किंतु अब कालिया ने अनुभव किया कि अब तो ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है जो गरुड़ से हजारों गुना बलशाली है। गरुड़ से हार करके ही कालिया यहां पर आए था, गरुड़ से डर करके, और भगवान तो गरुड़ से हजार गुना ज्यादा बलशाली है, तो इसलिए भगवान की शरण उसने ग्रहण कर ली है। आगे जब काली की पत्नियों ने देखा कि अखिल ब्रह्मांड को अपने शरीर में धारण करने वाले भगवान के भार से तरफ कितना थक गया है, भगवान अपने चरणों का प्रहार कर रहे हैं और भगवान के शरीर में समस्त ब्रह्मांड का भार है, तो कितनी हालत खराब हुई कालिया की। तो इस तरह कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से काली के छत्ते छत्ते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, बहुत पीड़ा हुई। इसलिए अपने वस्त्र आभूषण और बाल बिखराए हुए वे भगवान के निकट आई। कौन कौन आई? नाग पत्नियां अपने बालों को बिखेर करके, अपने वस्त्रों को बिखेर करके, आभूषणों को बिखराए हुए वो भगवान के सामने आई। संकट कृष्णस्य गर्भ जगतोति भरावसन्नम पार्षणी प्रहार परिरुग्न फणात पत्रम दृष्ट्वा हि माध्यमोपसेधु रमुष्य पत्न्यां आर्ताश्लतन वसन भूषण केश बंधान। काली की पत्नियां अपने पति के आसुरी स्वभाव से तंग आ गई थी, ये सोचती रहती थी यदि ये नास्तिक भगवान के दंड से मारा जाता है तो उसे मरने दो, हम विधवा होकर भगवान की पूजा करेंगे। किंतु जब उन स्त्रियों ने काली के मुख को देखा तो समझ गई कि इसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है। ये देख करके उन्होंने सोचा कि हम तो बहुत भाग्यशालिनी हैं, हमारा पति वैष्णव बन गया है, इसलिए हम किसको बचा लो, रक्षा करो। किंतु पहले सोचा कि मर जाए तो अच्छा है, हम विधवा हो जाएं तो भगवान का भजन करेंगी। नहीं, जब देखा कि वो शरण ले रहा है भगवान की, तो फिर वो शरण में आई भगवान की, किसकी रक्षा करो, तो भक्त बन गया आपका। अतएव हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। उनमें अपने पश्चाताप करने वाले पति के कष्ट उसकी दयनीय अवस्था पर इसने उमड़ आया, इसलिए एक साथ भगवान के समक्ष आ गई। अत्यंत उद्युग्न होकर के उन साधु स्त्रियों ने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और समस्त प्राणियों के स्वामी के समक्ष भूमि पर गिरकर साष्टांग प्रणाम किया। अपने पापी पति का छुटकारा चाहती थीं, भगवान के शरण चाहती थीं, नम्रता से हाथ जुड़े हुए वे उनके निकट में आई। तास्तम सुविघ्न मनसोथ पुरस्कृतार्भाम कायम निधाय भूविभूत पतिम प्रणेमुः साध्विहा कृतांजलि पुटां समलस्य भर्तु मोक्षेप सभा शरणदम शरणम प्रपन्नां। अब सर्प पत्नियां प्रार्थना करती हैं, क्या प्रार्थना करती हैं? इस अपराधी को जो दंड मिला है वो उचित ही है, ये प्रार्थना करने की विधि है कि इसको जो दंड मिला है ये उचित ही है। आपने इस जगत में ईर्ष्यालु और क्रूर पुरुषों का दमन करने के लिए ही अवतार लिया है, आप निष्पक्ष हैं, आप अपने शत्रुओं और पुत्रों को समान भाव से देखते हैं, क्योंकि जब आप किसी जीव को दंड देते हैं तो आप ये जानते हैं कि इसके हित के लिए ही ये हो रहा है। न्यायो हि दंड कृत किल विशेष में तब अवतारा खल निग्रहाय रिपोषता नाम अपी तुल्य दृष्टि धत्ते दमम फल में मानु संसन। आपने जो कुछ यहां किया है वो वास्तव में हमारे ऊपर आपकी कृपा है, क्योंकि आप दुष्टों को जो दंड देते हैं उनके पापों को दूर करने के लिए करते हैं। चूंकि ये हमारा पति है, इतना पापी है कि इसने सर्प का शरीर धारण किया है, अतः उसके प्रति आपका ये क्रोध है, आपकी कृपा ही समझी जानी चाहिए। अनुग्रहोयम भवता कृतोहिनो दंडो सताम ते खलु कल्मषापहं यद्दंड सुखत्व ममुष्य देहिनां क्रोधोऽपि तेनुग्रह एव सम्मतः। मध्वाचार्य का कहना है कि जब इस जगत में कोई पवित्र व्यक्ति कष्ट भोगता है तो वो अनुभव करता है कि भगवान ने जो उसे दंड दिया है ये भगवान की कृपा है, किंतु ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने शुद्धिकरण के लिए दंडित होने पर भी भगवान से ईर्ष्या करना नहीं छोड़ता, इसलिए वो भगवान को समझ नहीं पा रहा है। जो भक्त है वो भगवान की कृपा मानता है। अब ये नाग पत्नियां हैं, ये भक्त हैं, इसलिए वो मानते हैं कि ये आपकी कृपा है। क्या हमारे पति ने पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की थी? आपकी जो ये कृपा हुई में हमारे पति के ऊपर, तो हमारे पति ने क्या पूर्व जन्म में बहुत बड़ी तपस्या की थी? बिना अहंकार के दूसरों का आदर सम्मान किया था क्या? क्या इसीलिए आप इस वक्त प्रसन्न हैं? अथवा इसने किसी पूर्व जन्म में सब जीवों के प्रति दयापूर्वक धार्मिक कर्तव्य पूरे किए इसीलिए आप इससे संतुष्ट हुए हैं? क्या आपने किया, इस पर क्या कृपा की है? अपने चरण रखें, इसके सिर पर चरण रखें। उसकी तो हालत खराब हो रही है, लेकिन स्त्रियां जो है ना फिर भी भगवान की कृपा मान रहे हैं कि आपकी बहुत बड़ी कृपा है, आप अपने चरणों से जो है ना अगर प्रहार कर रहे हैं तो बहुत कृपा है। तपहा सुतत्तम के मने न पूर्वम निरस्त माने न च मान देन धर्मोथवा सर्वजनानुकंपयाम यतो भवान तुष्यति सर्व जीवान। वास्तव में तो गर्ग संहिता में वर्णन है कि जो काली सर्प था तो एक मुनि थे, अश्वसरा नाम के मुनि थे, दो मुनि थे अश्वसरा और देवसरा, ऐसी कुछ थे है ना। तो एक दूसरे को जो साप देते हैं तो एक ने साप दिया कि तुम सर्प बन जाओ और दूसरा साप दिया कि तुम कौवा बन जाओ है ना। इन दोनों भक्त थे भगवान के, तो बाद में फिर भगवान ने अश्वसरा मुनि को कहा कि तुम चिंता ना करो, तुम सर्प बनोगे लेकिन आगे चल करके तुमको तुम्हारे सिर पर मैं अपने चरण चिन्ह बनाऊंगा और उन चरण चिन्हों के कारण फिर गरुड़ जी तुम्हारा सम्मान करेंगे। इस तरह से अश्वसरा को भगवान ने वेदसरा, हाँ अश्वसरा और वेदसरा, वेदसरा अच्छा वेदसरा मुनि थे ये काली सर्प, वेदसरा मुनि थे और अश्वसरा जो है ना काकभूषण बने जो भगवान राम के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वेदसरा नाम के मुनि हैं ये। तो बहुत बड़ी तपस्या की थी वेदसरा मुनि ने, इसलिए तो भगवान उसके सिर पर नाचे। सोचो जिसके सिर पर भगवान नृत्य करें वो कितना भाग्यशाली है। तो इसलिए वो कह रही हैं, तो मैं तात्पर्य पढ़ रहा हूं। अच्छा, तो नाग पत्नियां इसकी पुष्टि करती हैं कि जब तक किसी ने अपने पूर्व जन्मों में भक्त द्वारा पुण्यकर्म नहीं किए होते वह कृष्ण के संपर्क में नहीं आ सकता। आगे श्लोक पढ़ दिया मैंने, 35वां नहीं पढ़ा। तपहा सुतप्तम के मने न पूर्वम निरस्त माने न च मान देन धर्मोथवा सर्वजनानुकंपयाम यतो भवान तुष्यति सर्व जीवान। हे प्रभु, हम नहीं जानते इस काली नाग ने किस तरह आपके चरण कमलों की धूल को प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त किया है। इसके लिए तो लक्ष्मी जी ने सब इच्छाएं त्याग कर कठोर व्रत धारण करके सैकड़ों वर्षों तक तपस्या की थी, और जो लक्ष्मी जी को नहीं प्राप्त हुई आपके चरणों की धूल इसने प्राप्त की है। कश्यानुभाव न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार यदवांछया श्री ललनाचर तपो विहाय कामान सुचिरम धृत व्रतां। जिन्होंने आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त कर ली है वे ना तो स्वर्ग का राज्य चाहते हैं, ना ब्रह्मा का पद चाहते हैं, न पृथ्वी की बात सही कहते हैं। उन्हें योग की सिद्धियों में और मोक्ष में भी कोई रुचि नहीं होती है। किनकी किनकी रुचि नहीं होती है सिद्धियों में मोक्ष में? जो आपके चरणों की धूल प्राप्त कर लेते हैं। न नाग पृष्ठम न चा सार्वभौमम न पारमेश्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वांसंदियन पाद रज प्रपन्ना। हे प्रभु, यद्यपि यह सर्पराज कालिया का जन्म तमोगुण में हुआ है और ये क्रोध के वशीभूत है, किंतु इसने अन्यों के लिए जो दुष्प्राप्य है उसे भी प्राप्त कर लिया। इच्छाओं से पूर्ण होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमण करने वाले जीव आपके चरण कमलों की धूल प्राप्त करने से ही अपने सारे आशीर्वादों को प्रकट होते देखते हैं। तदेश नाथाप दुराप मन्य समोजने क्रोध वसोप ही शहां संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणो यदि क्षतः स्याद विभवः समक्षः। बहुत सुंदर प्रार्थना है। इस तरह ब्रह्मांड के कष्ट और अज्ञान से हमेशा के लिए मुक्त होकर हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं, अगर हम भगवान के चरण कमलों की धूल प्राप्त कर लें। हे भगवान, हम आपको सादर नमस्कार करती हैं। यद्यपि आप सभी जीवों के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो भी आप सर्वव्यापक हैं। यद्यपि आप सभी भौतिक तत्वों के आश्रय हैं, किंतु आप उनसे पहले ही विद्यमान हैं। आप हर वस्तु के कारण हैं, किंतु परमात्मा होने से आप कार्य कारण से परे हैं। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे परम सत्य, हम आपको नमस्कार करती हैं। आप समस्त दिव्य चेतना और शक्ति के स्वामी हैं। यद्यपि आप भौतिक गुणों से पूर्णतया मुक्त हैं, किंतु आप भौतिक प्रकृति के संचालक हैं। ज्ञान विज्ञान निधये ब्रह्मणे नंत शक्तये अगुणाय विकाराय नमस्ते प्राकृताय च। हम आपको नमस्कार करती हैं। आप साक्षात काल हैं, काल के आश्रय हैं, काल के साक्षी हैं। आप ब्रह्मांड हैं, इसके पृथक दृष्टा भी हैं। आप इसके सृष्टा हैं और समस्त कारणों के भी कारण हैं। काल आए काल नाभाय कालावयव साक्षिणे विश्वाय तदुपद्रष्टे तत्कर्त्रे विश्वहेतवे। आप भौतिक तत्वों के परमात्मा हैं, इंद्रियों के भी परमात्मा हैं, प्राण वायु के भी परमात्मा हैं। आपको हम नमस्कार करती हैं। आपकी व्यवस्था के कारण जितनी आत्माएं हैं प्रकृति के तीन गुणों में अपनी झूठी पहचान बनाती हैं। हे अनंत भगवान, हे परम सूक्ष्म एवं सर्वज्ञ, हम आपको प्रणाम करती हैं। भूत मातेन्द्रिय प्राण मनोबुद्ध्याशयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़स्वात्मानुभूतये नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावाधानुरोधाय नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। समस्त प्रमाणों के आधार, शास्त्रों के प्रणेता, परम स्रोत, इंद्रिय तृप्ति को प्रोत्साहन करने वाले और भौतिक जगत से विराग उत्पन्न करने वाले, वैदिक साहित्य में अपने को प्रकट करने वाले, आपको हम बारंबार नमस्कार करती हैं। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। हम वसुदेव के पुत्र को नमस्कार करती हैं, भगवान कृष्ण को, भगवान राम को नमस्कार करती हैं, भगवान प्रद्युम्न को और भगवान अनिरुद्ध को नमस्कार करती हैं। हम विष्णु के समस्त संत भक्तों के स्वामी को सादर नमस्कार करती हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वताम् पतये नमः। नाना प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों को प्रकट करने वाले हे भगवान, आपको हमारा नमस्कार है। आप अपने को भौतिक गुणों से छिपा लेते हैं, आप साक्षी रूप में भौतिक गुणों से पृथक रहते हैं, एकमात्र अपने भक्तों द्वारा ही भली भांति जाने जाते हैं। नमो गुणे प्रदीपाय गुणात्मन छादनाय च गुण मृत्युपलक्ष्याय गुण द्रष्टे स्वसंविदे। हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करती हैं, क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत रूप से महिमा संपन्न हैं। आपके अस्तित्व को समस्त जगत के लिए सृष्टा और प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु भक्तों के लिए आप मौन बने रहते हैं। अव्याकृत विहाराय सर्व व्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते स्तु मुनये मौनशीलिने। उत्तम और अधम समस्त वस्तुओं को जानने वाले और समस्त जगत के अध्यक्ष नियत